लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। प्रभु, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं, मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ा और मैंने ऐसे कार्यों की कल्पना नहीं की जो मेरी शक्ति से परे हैं। आगे कहता है, मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझमें है। इसराइल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। श्रोताओं, ये था स्तोत्र ग्रंथ का 131वां भजन। इसी भजन के पाठ से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 131वें भजन में भजनकार बाल सुलभ मनोभाव व्यक्त करता है। वह कहता है, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं, मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ा और मैंने ऐसे कार्यों की कल्पना नहीं की जो मेरी शक्ति से परे हैं। वस्तुतः इस छोटे से गीत में प्रभु ईश्वर के प्रेम का बखान किया गया है। उन्हीं के प्रेम पर विश्वास की अभिव्यक्ति की गई है और ईश प्रेम पर मानव के पूर्णतः निर्भर रहने की बात कही गई है। अनेक बार हम मनुष्य जीवन के विरुद्ध बगावत कर बैठते हैं, कई बार हम विद्रोह कर उठते हैं, इसलिए कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह हमें पसंद नहीं होता, वह वैसा नहीं है जैसा कि हम चाहते हैं। भजनकार कहता है कि मैं अहंकारी नहीं हूं, महत्वाकांक्षी नहीं हूं, मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ता हूं, फिर भी क्यों मैं कष्ट भोगता हूं। मेरी आत्मा शांत है, वह मौन है, फिर भी विरोधियों का कोलाहल मुझ तक क्यों कर पहुंचता है। फिर जेरूसलम की ओर अग्रसर तीर्थयात्री स्वतः से प्रश्न करता है, क्या उसका विरोध सही है, क्या वह गलत नहीं कर रहा। अपने अंतर मन में झांक कर जब वह देखता है तब उसे महसूस होता है कि जिस प्रभु ईश्वर की सदैव उस पर कृपा बनी रही, उसी के वरदानों पर वह शक करने लगा था, उन्हीं की आशीष पर उसका भरोसा कमजोर बनने लगा था। तब मानो वह एक गहरी नींद से जाग उठता है और कहता है, इसराइल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। यहाँ इसराइल से तात्पर्य सभी प्रभु भक्तों से है जो प्रभु पर भरोसा रखने के लिए आमंत्रित हैं। हम सब आमंत्रित हैं, कि हम प्रतिपल प्रभु को धन्यवाद ज्ञापित करें तथा अपनी व्यथाओं, उत्कंठाओं और सारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु ही हैं तारणहार, वे ही हैं हमारे उद्धारकर्ता। आगे स्तोत्र ग्रंथ के 132वें भजन में मंदिर में मंजूषा के प्रतिष्ठापन का दृश्य वर्णित किया गया है। 18 पदों वाले इस भजन के प्रथम 5 पद इस प्रकार हैं: प्रभु दाऊद को याद कर और उसके समस्त कष्टों को, प्रभु के सामने उसकी शपथ को, याकूब के सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति उसकी मन्नत को, मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपनी शैया पर विश्राम नहीं करूंगा, अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, अपनी पलकों को झपकी नहीं लेने दूंगा, जब तक कि मैं ईश्वर के लिए स्थान न पाऊं, याकूब के सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए निवास। यहाँ भजनकार दाऊद की मन्नतों को याद कर तीर्थयात्रियों को स्मरण दिलाता है कि दाऊद ने जब तक प्रभु की मंजूषा का प्रतिष्ठापन नहीं कर लिया था, तब तक उन्होंने विश्राम नहीं किया था। शक्तिमान ईश्वर के लिए स्थान पाने तक वह चैन से नहीं बैठा। श्रोताओ, राजा सुलेमान द्वारा निर्मित जेरूसलम के पहले मंदिर को नबूखदनेस्सर के आततायियों ने लगभग ईसा पूर्व 500वें वर्ष में ढा दिया था, और अब जब दूसरे मंदिर का निर्माण कर लिया गया था, उसमें मंजूषा के प्रतिष्ठापन की आवश्यकता थी। इसी के संदर्भ में भजनकार ईश्वर के लिए स्थान पाने का जिक्र करता है। जेरूसलम की ओर आरोहित तीर्थयात्री भी यही चाहते थे कि नए मंदिर को ईश्वर का स्थान और ईश्वर का धाम होना चाहिए। जेरूसलम के नए मंदिर में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों से मंदिर का याजक वह सब याद करने के लिए कहता है जो कुछ दाऊद ने किया था, वह सब जो उनके पूर्वज याकूब ने किया था। उन्होंने ईश्वर की मंजूषा को मंदिर में एक विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठापित किया था, और अब ईसा पूर्व 587वें वर्ष में नए मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर प्रभु भक्तों से यही अपेक्षा की जा रही थी कि वे नए मंदिर का अनुष्ठान समारोह संपन्न कर उसमें प्रभु की मंजूषा के लिए स्थान तय करें। श्रोताओं को बता दें कि मंजूषा एक छोटा सा बक्सा था जिसे मिस्र की गुलामी से मुक्त होने के बाद इजरायली लोग अपने साथ ले आए थे। इस बक्से में प्रभु का विधान अंकित था। इसमें वे नियम लिखे थे जिसे प्रभु ईश्वर ने नबी मूसा के माध्यम से इजरायली प्रजा को अर्पित किए थे। जेरूसलम के पहले मंदिर के निर्माण के समय राजा सुलेमान ने इस मंजूषा को उसमें प्रतिष्ठापित किया था। राजाओं के पहले ग्रंथ के 8वें अध्याय के 13वें पद में राजा सुलेमान कहता है, प्रभु मैंने तेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। सुलेमान ईश्वर को धन्य कहता है क्योंकि ईश्वर ने दाऊद से की गई अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। यह प्रतिज्ञा थी कि दाऊद नहीं बल्कि दाऊद का पुत्र सुलेमान प्रभु के मंदिर का निर्माण कराएगा। श्रोताओ, ईश्वर के लिए स्थान को तय करना, यह वास्तव में सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। हमारे हिंदू और बौद्ध भाइयों के लिए तो यह अटपटा ही लगेगा। मन में प्रश्न उठेंगे कि क्या प्रभु ईश्वर सर्वत्र नहीं है? क्या वे सब कुछ में और प्रत्येक मानव व्यक्ति के अंतर में वास नहीं करते? इन प्रश्नों का उत्तर बड़ी बखूबी से बाइबल धर्म ग्रंथ के दोनों ही व्यवस्थानों में दिया गया है। ईश शास्त्री प्रभु यावे के लिए एक विशिष्ट स्थान को प्राचीन व्यवस्थान में निहित प्रकाशना का नाम देते हैं। हालांकि यह संकल्पना प्राचीन व्यवस्थान तक ही सीमित नहीं है, अपितु नवीन व्यवस्थान में भी मिलती है। सुसमाचार लेखक संत योहन पहले अध्याय के 14वें पद में लिखते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। एक विशिष्ट क्षण में एक विशिष्ट व्यक्ति ने शरीर धारण कर हम मनुष्यों के बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी जो पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण।
वचन अनादि था, स्वयं वो ईश्वर था, वो अनादि से जग की ज्योति था। जग भव पावन ईश सुहावन, धन्य है
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो पालिया ने जीवन के लिए गठित परमधम पीठ अकादमी द्वारा प्रकाशित एक नए दस्तावेज कोविड-19 महामारी के समय में मानव परिवार द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों एवं अवसर पर प्रकाश डाला। जीवन के लिए गठित परमधम पीठ अकादमी ने बुधवार को एक दस्तावेज जारी किया जिसका शीर्षक है, महामारी के युग में मानव समुदाय जीवन के पुनर्जन्म पर असामयिक चिंतन। अकादमी के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष विंचेंसो पालिया ने एक साक्षात्कार में दस्तावेज के मूल बिंदुओं की व्याख्या की। महाधर्माध्यक्ष ने कहा, मानव समुदाय संत पापा फ्रांसिस के एक पत्र का शीर्षक है जिसको उन्होंने 6 जनवरी 2019 को अकादमी की 25वीं वर्षगांठ पर भेजा था। पत्र में संत पापा ने उस संबंध पर चिंतन करने का आह्वान किया था जो मानव परिवार को एक साथ लाता एवं साझा मूल्यों, उद्देश्यों एवं पारस्परिकता को उत्पन्न करता है। यह महामारी हमें असाधारण रूप से दो चीजों के प्रति सचेत करता है। एक ओर यह दिखलाता है कि हम किस तरह परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं, जबकि दूसरी ओर यह असमानता को बढ़ाती है। हम सब एक ही तूफान की चपेट में हैं, किंतु एक ही नाव पर सवार नहीं। उन लोगों के लिए जो अधिक कमजोर हैं, नाव अधिक आसानी से डूब जाती है। जीवन के लिए पुनर्जन्म का आउटडेटेड चिंतन का क्या अर्थ है? महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि आउटडेटेड एक ऐसा शब्द है जो दर्शन शास्त्र परंपरा से आता है। यहाँ हम इसका प्रयोग थोड़ी उत्तेजना समुदाय की एक अवधारणा को खोजने की तात्कालिकता को इंगित करने के लिए करते हैं, जो कि जाहिरा तौर पर फैशनेबल नहीं है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि ऐसे समय में जब जीवन खतरे में है और हम प्रियजनों की मृत्यु और हमारे समाज के मूल बिंदुओं की हानि से प्रभावित होते हैं, हम स्वयं को मास्क या स्कूलों को फिर से खोलने की तारीख पर चर्चा करने तक सीमित नहीं रख सकते। हमें अवसर लेना और बाजार एवं शिक्षा को बदलने के लिए बेहतर परिस्थितियों पर चर्चा करने का साहस तलाशना होगा। महामारी ने लोगों और समाज की दुर्बलता को दिखलाया है। यह वैश्विक संकट है जिसने विश्व के उत्तरी और दक्षिणी भागों को प्रभावित किया है एवं वैज्ञानिकों के पास अब भी निश्चित उत्तर नहीं है। क्या यह सचमुच एक नवीनता है? उन्होंने उत्तर दिया कि अज्ञात वायरस के उद्भव में नवीनता इतनी नहीं है। वास्तव में इस नुकसान को उसी क्षेत्र में सीमित और पराजित किया जा सकता था, पर अभूतपूर्व तथ्य है कि इसकी गति और चौड़ाई जिसके साथ यह संबंधों और परिवहन के नेटवर्क से फैलता है, मीडिया की भूमिका भी नहीं है, जिसने निर्णय लिया कि संकट के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, और निश्चय ही इसके लिए बहुत अधिक बात की गई। इसलिए नवीनता एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़े हुए समाजों के युग में खतरे के प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित अनुरूपता और भ्रम के अजीब मिश्रण में निहित है। हालांकि अति व्यक्तिवाद की स्थिति भी है। समुदाय की कमजोरी है कि इस खतरे की घड़ी में जब इसे हमें समर्थन और सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, हमें हमारी अनिश्चितताओं एवं दुर्बलताओं में छोड़ दिया है। संकट के इस घड़ी में ख्रिस्ती समुदाय की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में महाधर्मदश ने कहा कि ख्रिस्ती समुदाय सबसे पहले संकट को समझने में मदद दे सकता है, न केवल एक संगठनात्मक तथ्य के रूप में जिससे दक्षता में सुधार करके दूर किया जा सकता है, बल्कि इसे अधिक गहराई से समझने के द्वारा कि अनिश्चितता एवं नाजुकता मानवीय स्थिति के निर्माणात्मक आयाम है। अतः इस सीमा का सम्मान किया जाना चाहिए और हर विकास परियोजना को ध्यान में रखते हुए दूसरों की दुर्बलताओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के लिए हैं। COVID-19 से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने हेतु बृहस्पतिवार को विश्व भर के धर्म समाजों की ओर से एक ऑनलाइन प्रार्थना का आह्वान किया गया है। इस पहल का आयोजन सुपीरियर जनरलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से लातिन अमेरिकी धर्म संघ, कैरेबियन धर्म सामाजी एवं अमेरिका में महिला धर्म सामाजियों के सम्मेलन के तत्वाधान में किया गया है। प्रेरितों की रानी की धर्म बहनों की सुपीरियर जनरल सिस्टर मेरी बारोन ने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि इसका आयोजन तालाबंदी में महसूस की जा रही एकाकीपन एवं अकेले हो जाने के अनुभव को बांटने के लिए किया गया है, जिससे कि वैश्विक पीड़ा के समय में एक दूसरे को सहयोग दिया जा सके। सिस्टर बारोन ने गौर किया कि महामारी ने विभिन्न स्तरों पर पूरे विश्व को प्रभावित किया है, खासकर अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको, भारत, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, पेरू, चिली आदि देश इस समय महामारी के कारण विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अमेरिका के कार्तिक धर्मदर्शों ने गिरजाघरों के तोड़फोड़ एवं आगजनी की बढ़ती घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भ्रम एवं घृणा का जवाब समझदारी एवं प्रेम से देने का आग्रह किया है। अमेरिका के कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन ने कैथोलिक गिरजाघरों, प्रतिमाओं एवं अन्य धार्मिक प्रतीकों पर हो रहे हमलों की अनेक घटनाओं के जवाब में एक बयान जारी किया है। अमेरिका के कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन के धार्मिक स्वतंत्रता समिति, घरेलू न्याय एवं मानव विकास समिति के अध्यक्ष ने हाल में हुई हिंसक घटनाओं की याद दिलाई, जिसमें फ्लोरिडा में हुए हमले की घटना शामिल है, जब एक चालक ने अपने कार से गिरजाघर पर टक्कर मारा था और उस पर आग लगाने की कोशिश की थी। धर्मदर्श ने कहा कि विगत दिनों येसु ख्रिस्त एवं धन्य कुंवारी मरियम की कई प्रतिमाओं को भी तोड़ा और अपवित्र किया गया था। जुलाई माह के शुरू में लॉस एंजल्स में संत गैब्रियल के ऐतिहासिक मिशन गिरजाघर को भी आग द्वारा नष्ट किया गया था। महाधर्मदर्श ने कहा, क्या इन कामों को अंजाम देने वाले परेशान थे जो मदद की खोज कर रहे थे, या नफरत फैलाने वाले एजेंट थे जो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे? हमले संकेत हैं कि समाज को चिकित्सा की जरूरत है। यह स्वीकार करते हुए कि घटनाओं के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं है, महाधर्मदश ने कहा कि वे जिम्मेदार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैटिकन पब्लिशिंग हाउस ने वैटिकन के संत मार्था में संत पापा फ्रांसिस के दैनिक मिसा उपदेश और कोरोना वायरस महामारी के समय में की जाने वाली प्रार्थनाओं के संग्रह को PDF फाइल के रूप में प्रकाशित किया है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।